حاله
कलयुग के अंत में कोई देवता नहीं है, कलयुग के अंत में कोई देवता नहीं है, लेकिन कोष में हम देते हैं सतयुग के अंत में 2 करोड़, गीता के अंत में 10 करोड़ और कलयुग के अंत में 33 करोड़ देवता देवी देवता होते हैं, ये कैसे?
पक्का देवता उन्हें कहा जाता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, बाकी जो कम जन्म लेने वाले हैं या तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, अगर कन्वर्ट नहीं भी होते हैं कम जन्म लेने वाले तो तामसी स्टेज के देवता हैं, सात्विक स्टेज के देवता नहीं कहेंगे। ऐसे हर धर्म में होता है, हर धर्म में सात्विक स्टेज वाली आत्मा भी उतरती है और तामसी स्टेज वाली भी आत्माएं उतरती है। हर धर्म की आत्माएं अंत तक उतरती रहती है, बीच में आना कोई बंद नहीं होते। इसलिए बोला है कि देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः लोप हो जाने का मतलब ये नहीं है कि पूरा लोप हो जाता है, जो पुराने पुराने हैं वो भले संग के रंग में आते आते तमो प्रधान बन जाते हैं तो वो तो देवता रहेंगे क्योंकि कन्वर्ट हो गए, लेकिन जो देवता धर्म की नई नई आत्माएं उतरती है वो पुराणों के मुकाबले जास्ती सतो प्रधान होती है। इसलिए कहा जाता है देवता धर्म अभी भी बाकी है लेकिन प्रायः लोप है। इस 500-700 करोड़ की दुनिया में यदा कदा कहीं भी कोई परिवार है जो 60-70 लोगों का परिवार एक ही चूल्हे पर रोटी बनती है, सब इकट्ठे रहते हैं और उनके परिवार का एक मुखिया धर्म सत्ता और राज सत्ता एक हाथ में लेकर के चलता है, ऐसे परिवार यदा कदा कहीं देखने में आते हैं।
सेवन में भगवान आते हैं तब जनसंख्या कितनी रहती है विश्व की?
भारत की जनसंख्या 40 करोड़ से कम होती है, जिस समय स्वतंत्रता मिली भारतवर्ष को उस समय की जनसंख्या 40 करोड़ बताई जाती है, अभी तो 100 करोड़ से भी भारत की जनसंख्या ऊपर हो गई, माने 2.5 गुनी जनसंख्या बढ़ गई। उस हिसाब से अगर दुनिया की जनसंख्या उस समय झांकी जाए तो अभी अगर 600 करोड़ है तो उस समय कितनी होनी चाहिए? 2.5 हिस्से करें उसमें से 1 हिस्सा, तो देवता धर्म की भी आत्माएं ऊपर ढेर की ढेर पड़ी हुई है। रामदेव थोड़े समय में ही कितना चारों तरफ प्रचार हो गया, कितना मान मर्तबा देश विदेश में मिल गया, किस कारण मिला है? कोई नई आत्मा है जिसने आकर के प्रवेश किया? आचार्य रजनीश थोड़े समय में ही चारों तरफ सारी दुनिया में प्रचार हो गया, हाँ ये कहेंगे कि आचार्य रजनीश अलग प्रकार की आत्मा और स्वामी रामदेव अलग प्रकार की आत्मा, बाकी पाठ तो वही पढ़ाते हैं जो शास्त्रों में पतंजलि योग में पढ़ाए गए, शास्त्रों की जो बातें हैं आयुर्वेद की बताई गई, आयुर्वेदाचार्य ने जो सुनाया वही योग की बातें, शारीरिक योग की बातें सुनाई, वही कुंभक प्राणायाम, प्राणायाम की बातें सुनाई। हाँ, उन बातों का प्रभाव इतना रहा, इससे साबित होता है कि ये ऊपर से उतरी हुई कोई सनातन धर्म की नई आत्मा।
सनातन धर्म की संदेशी आत्मा जो संदेश है सनातन धर्म की,
सनातन धर्म की
कैसे कहेंगे?
सनातन धर्म में भी जो मुख्य आठ हैं, अष्टदेव, वो सब धर्मों के पूर्वज हैं या नहीं है? हैं? उनमें संन्यास धर्म का कोई पूर्वज है या नहीं है? उसे सन्यासी कहेंगे? ऐसे इसको भी सन्यासी कहते हुए भी कौन से धर्म का कहेंगे? किसके कहेंगे? इस्लाम धर्म का फॉलोअर कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे? नास्तिक भी नहीं कहेंगे, फिर भी कहेंगे सनातन धर्म।
कम जन्म होते हैं।
हाँ जी,
इनका प्रभाव इतने भारी कैसे?
कम जन्म और ज्यादा जन्म का प्रभाव, प्रभाव जो है वो सतो प्रधान और तमो प्रधान आत्मा का हिसाब होता है या कम जन्म ज्यादा जन्म का हिसाब होता है? इस बात का प्रभाव है, जो भी दुनिया में आत्माएं प्रभावित होती है वो किस बात से प्रभावित होती है? प्योरिटी से प्रभावित होती है। जो भी नई उतरी हुई आत्मा है, परमधाम से डायरेक्ट उतरी है, वो नई होने के कारण, सत्व प्रधान होने के कारण ज्यादा लोगों को प्रभावित कर लेती है थोड़े समय में, भले जन्म कम है। हाँ, ये प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो कम जन्म लेने वाली आत्मा है वो कम समय में सत्व प्रधान से तमो प्रधान बन जाएगी, और जो ज्यादा जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो लंबे समय में सतो प्रधान से तमो प्रधान बनेगी। ज्यादा जन्म लेने वालों में भी नंबरवार है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले बीज रूप आत्माएं हैं उनमें कोई कोई ऐसे भी हैं जो द्वापर युग से ही तमो प्रधान बनने लग पड़ते हैं, इस्लाम धर्म के बीज होने के कारण। और कोई कोई ऐसे भी हैं जो आखिरी जन्म में जाकर के तमो प्रधान बनते हैं, अंत तक अपने धर्म के पक्के रहते हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते।
नंबर
बन जाते
नर और नरेंद्र राम का नाम लेके कबूतर पानी में छोड़ते तैर जाते, इसी तरह राम पानी में पत्थर छोड़ता है तो तैरता नहीं, लेकिन रावण भी पानी में पत्थर छोड़ता है तो भी तैर जाता
है।
रावण जो पानी में पत्थर छोड़ता है वो भी तैर जाता है पानी
में,
वो राम का पत्थर भी नहीं तैर जाता।
जो रावण है, रावण संप्रदाय के, वो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं या पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं? कम जन्म लेने वाली आत्माएं, और जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो डायरेक्ट परमधाम से नीचे उतरती हैं तो सतो प्रधान है या तमो प्रधान है? राम वाली आत्मा उस समय कैसी होती है? नीचे गिरी हुई होती है। तो ऊपर से जो आने वाली रावण संप्रदाय की आत्माएं हैं वो सात्विक स्टेज वाली होती है, जिन आत्माओं को भी आगे बढ़ाती है वो सहज ही आगे बढ़ने वाली होती है, क्योंकि बाप के घर से डायरेक्ट आई हुई है। ऐसे नहीं कि राम वाली आत्मा कभी भी पारस बुद्धि बनती ही नहीं है। पानी में तैरने वाला हल्का पत्थर नहीं बनती है, ऐसे भी नहीं। वो संपन्न स्टेज नहीं बदलती है कभी। राम रावण बनता है कि नहीं बनता है? हैं? बनता है। तब जब राम ही रावण बनता है तो उसके द्वारा तैराए हुए पत्थर पावन नहीं बनेंगे। एक होता है बेसिक ज्ञान और एक होता है एडवांस ज्ञान। जो लौकिक जन्म लिया है उसमें बेसिक ज्ञान मां देती है, वो बेसिक ज्ञान है ये ब्रह्मा है ये विष्णु है ये शंकर है, गहरी पहचान नहीं है, सिर्फ एक सामान्य पहचान है कि तुम आत्मा हो, तुम्हारी आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है, वो भी बिंदी है। और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन देवताएं हैं जिनके द्वारा वो त्रिमूर्ति बाप कहा जाता है। फिर गहराई से प्रश्न पूछो तो जवाब नहीं देगा, इसलिए फिर दोबारा शादी होने से पहले उसको संपूर्ण ब्राह्मण बनाया जाता है। संपूर्ण ब्राह्मण अर्थात तीनों मूर्तियों का परिपक्व ज्ञान। कैसा परिपक्व ज्ञान? कि एक एक धागे के बारे में उसे पूरी जानकारी हो कि ये ज्ञान का धागा, ये स्नेह का धागा, कौन सा पार्ट बजाने वाली मूर्ति है जिससे कनेक्टेड हो, तीनों धागे कौन से परम ब्रह्म से कनेक्टेड है। जो भक्ति मार्ग में कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, ये तीन मूर्तियां हो गई। फिर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो ब्रह्म फांस कही जाती है। तीनों ही मूर्तियों का गठबंधन एक गांठ से होता है, जगह तो पूरा परिपक्व सृष्टि का ज्ञान होना चाहिए, तब कहेंगे द्विज, दो जन्म लेने वाला ब्राह्मण, तभी पूरी प्रत्यक्षता होगी। बाप की भी प्रत्यक्षता होती है तो नंबर वार बच्चों की भी प्रत्यक्षता होती है।
अक्षय
माने नष्ट होना, अक्षय माने जो नष्ट न हो। तीजरी की कथा भी गाई जाती है, जैसे बाबा ने कहा ये सत्यनारायण की कथा भी है, तीसरा नेत्र खुलने की भी कथा है, यही अमर कथा है। तो ऐसी कथा है जो अक्षय बनाती है, अक्षय माने अविनाशी बनाती है। कथाएं तो हम सब ब्राह्मण सुनते रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन अक्षय कहां तक बने हैं? अक्षय माने निश्चय बुद्धि, पक्के माया क्षय तो नहीं कर देती है, अनिश्चय बुद्धि तो नहीं बनाई देती है, हमारी आत्मा का हनन तो नहीं हो जाता है। अक्षय बुद्धि बने माने हमने पक्की पक्की नारायण की कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, तीसरा नित्य कुलने की कथा पक्की कर ली, और
जब आत्मा ऊपर जाती परम नाम से वाले आत्मा भर्त होती है क्या पंचम दाया रेडी हो जाती है।
जो परिपूर्णता है ज्ञान की वो ब्रह्मा की मूर्ति में है, शंकर की मूर्ति में है या विष्णु की मूर्ति में। ज्ञान की परिपक्वता कौन सी मूर्ति में है? है? शंकर की मूर्ति में। अगर शंकर की मूर्ति में परिपक्वता है तो शंकर की कोई ऐसी मूर्ति बताओ जो याद में न बैठी हो, तपस्या में न हो, ऐसी कोई मूर्ति होती है? नहीं होती। इससे साबित होता है कि जो याद में बैठा हुआ है, तपस्या में बैठा हुआ है, वो परिपक्व नहीं है। इसलिए शंकर भी नाम है, शंकर है माने मिश्रण है, परिपक्व सात्विक स्टेज नहीं है। सात्विक स्टेज विष्णु की है, इसलिए विष्णु की चार भुजाएं दिखाई जाती हैं और पांचवा है उनको चलाने वाला, पांच आत्माओं का स्वभाव संस्कार का सम्मिश्रण वो ही कहा जाता है विष्णु। तो जो चार आत्माएं बताई, दो जन्म देने वाले और दो जन्म लेने वाले, वो चारों का पुरुषार्थ समान हो जाता है। सिर्फ इतना अंतर होता है कि शरीर से दो दिखाई पड़ते हैं और दो दिखाई नहीं पड़ते। जो दिखाई पड़ते हैं उनको दुनिया मान लेती है, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं उनको सारी दुनिया नहीं मानती। इसलिए दो हैं संगमयुगी कृष्ण राधा और दो हैं सतयुगी राधा और कृष्ण, दो हैं बाप के रूप में रचयिता के रूप में, दो हैं रचना के रूप में। रचयिता बाप अकेला संपन्न नहीं बनता है, बाप बच्चों के साथ संपन्न बनता है या अकेला बनता है? अकेला जाता है, बच्चों के साथ जाता है। देह का बाप है आत्माओं का बाप पहले नंबर में, फिर बेहद का बाप है मनुष्यों का बाप। तो जो मनुष्यों का बाप है वो आत्माओं के बाप को फॉलो नहीं करेगा, आत्माओं का बाप अकेला वापस नहीं जाता है, तो मनुष्यों का बाप अकेला वापस चला जाएगा क्या? कि रचना को साथ लेकर जाएगा, साथ लेकर जाएगा और साथ लेकर आवेगा।
साथ लेके आ रहा है लक्ष्मी की, लक्ष्मी का जो शरीर होगा वो चार पांच महीने का गर्भ रेडी होगा।
गर्भ की तो बात ही नहीं कि लंबे समय नौ नौ महीने में गर्भ धारण करना पड़े, ये बोझ कहाँ धारण करना पड़ता है, नरक की दुनिया में या स्वर्ग में? ये तो नरक की दुनिया की बात है, वहां बोझ उठाने की बात नहीं है। जैसे गाय का बच्चा होता है जन्म लेते ही उछलने कूदते और दौड़ने लग पड़ता है। उसके दो महीने तीन महीने या दो चार वर्ष उसको पालने में डाल करके पालना हुआ चीची साफ नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जानवरों में भी सत्व प्रधान जानवर। ऐसे मनुष्यों की जो कैटेगरी है उनमें देवात्माओं की भी ऐसी कैटेगरी बन जाएगी कि बच्चों को नौ महीने पेट में नहीं धारण करना पड़ेगा, दो दो साल तीन तीन साल उनको पालने में डाल करके नहीं पालना करनी पड़ेगी। पैदा होते ही बच्चे बड़े होने लगेंगे।
गर्भ में तो आएगी।
हाँ गर्भ में क्यों नहीं आएगी,
बर्फ में रहेगी कि बर्फ के बाहर?
बर्फ में ही होगी, बर्फ से बाहर आएगी। और आत्मा बाहर तो तभी आएगी, हलन चलन तो तभी होगी जबकि उसमें आत्मा आएगी।
बर्फ में भी गर्भ में अपना गर्भ बर्फ में,
बर्फ से बाहर आने का टाइम ही तब होगा जब आत्मा प्रवेश करे। और
जो लाड़ के बच्चे होते हैं उनको बाप सिर कर लेते हैं, वो गंगा हो गई।
हाँ जी, आठ भी हो गए, गंगा भी हो गई और अष्टदेव भी हो गए।
पार्वती को बोल के दिखाए वो सिर संगी नहीं गई पार्वती के लिए, वो सिर संगी नहीं गई
पार्वती क्या
सिर से गिरी है तो उनको बोल के दिखाए।
हाँ
सिर संगी नहीं गंगा पार्वती,
पार्वती ने पहले नहीं उठाया होगा ईश्वरीय ज्ञान, निग्लेक्ट किया होगा। और गंगा ने एडवांस ज्ञान या ईश्वरीय ज्ञान को जो बाप का सत्य ज्ञान है वो पहले उठाया होगा या पार्वती के साथ उठाया होगा? है किसके साथ उठाया होगा? भगवान बाप को पहले किसने पहचाना? गंगा ने पहचान। तो बाप की ज्यादा वैल्यू और पहले वैल्यू किसकी हो, किसको हुई? गंगा को हुई।
सिर से गिरी पार्वती के लिए
है,
सिर से गिरी पार्वती के लिए
धारणा की बात है। गंगा ने उस ज्ञान को उतना धारण नहीं किया जितना ना पार्वती ने किया। और
यूनिटी और वैराग्य का इसका क्या कनेक्शन
है?
यूनिटी और वैराग्य है
इसका
क्या कनेक्शन
है? जो सच्ची वैराग्य वृत्ति है वो लास्ट में आती है, और लास्ट में जब वैराग्य वृत्ति आती है तब दुनिया से बुद्धि डिटैच होना शुरू होती है। ऐसे नहीं कि एक सेकंड में डिटैच हुई और बुद्धि पवित्र बन जाएगी। अभ्यास करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो यही अंतर है। प्योरिटी को लाने के लिए लंबे समय का अभ्यास चाहिए। सब बता दी अरे भाजो, चारों तरफ से बुद्धि से वैराग हो जाए और एक की याद में बुद्धि तल्लीन हो जाए, लंबे समय का पुरुषार्थ, अंत में जो फाइनल परीक्षा होगी उसमें पवित्रता की स्टेज में पास करा देगा। तो वैराग अलग बात और प्योरिटी अलग बात।
बाबा कोई मन बुद्धि से पवित्र रहता है, कोई शरीर से पवित्र रहता है, कोई मन बुद्धि से पवित्र रहता है, शरीर से पवित्र रहता है, उसका कैसे?
उदाहरण दो, ऐसे तो भ्रम पैदा हो जाता है। शरीर से पवित्र रहने का मतलब क्या और मन बुद्धि से पवित्र रहने का मतलब क्या? मंदिर में शिवलिंग दिखाया जाता है, पार्वती की योनि दिखाई गई है, माता का रूप दिखाया गया है और पिता का लिंग दिखाया गया है, दोनों शरीर से साथ है, इम्प्योर है या प्योर है?
अरे बोल ही नहीं पा रहे।
फिर ये शरीर की पवित्रता है या मन बुद्धि की पवित्रता है, आपका क्या मतलब है पूछने?
ऐसा
है,
मन बुद्धि से कोई पवित्रता भी शरीर
तो मन बुद्धि से पवित्र है या नहीं है वो? है, है? फिर शरीर की पवित्रता का क्या मतलब? अगर बांधेली माताएं भी हैं और उनका पति ज्ञान में नहीं चलता है, माताएं ज्ञान में पक्की है या कोई माता ज्ञान में पक्की है, पति जोर जबरदस्ती करता है, शरीर को बंधन में डालता है, बांध देता है, माता की बुद्धि वैराग में आ गई है, बुद्धि से ऊपर उड़ जाती है, बुद्धि इंद्रियों के सुख में लिप्त नहीं होती, शरीर को मुर्दा बना देती है। तो पवित्र है या अपवित्र है शरीर? क्या कहेंगे? शरीर को पवित्र कहेंगे ना? ऐसे ही है, यहां तो सारा अंदर का खेल है, आत्मा का खेल है, शरीर की इंद्रियों से अगर विकारी सुख भोगते हैं तो अपवित्र है, और शरीर की इंद्रियों से विकारी सुख तब तक नहीं भोगा जा सकता जब तक मन उसमें लिप्त न हो। मन बुद्धि को ऊपर उड़ा दिया तो मन भगवान की याद का सुख भोगेगा या इंद्रियों का सुख भोगेगा? भगवान की याद का सुख भोगेगा। और
अब जब लक्ष्मी आती है जगदम्बा की भी बनती है कि योगिनी माता बनती है, क्योंकि जगदम्बा के बारे में कहा कि पूरा ज्ञान का भंडार है और योगिनी माता है गहराई से ज्ञान सुनाने वाली, तो कौन ज्ञान सुनाता है?
जो जैसा होगा वैसा ही बनावेगा या उससे ज्यादा अच्छा बना देगा? चोर होगा तो जो भी ज्ञान सुनाएगा उस ज्ञान में चोरी का पुट होगा या नहीं होगा? अगर वाचा से बोल बोल करने वाली है आत्मा, ज्ञान सुनाने वाली है, तो वाचा में सिद्धहस्त बनावेगी या धारणा में सिद्धहस्त बनावेगी? वाचा में बनावेगी।
बाबा कहते हैं
कि कमल का फूल चाहे नीचे को हो चाहे ऊपर का हो, है किसके हाथ में पकड़ा हुआ है? उसकी पकड़ किसके हाथ में है? भाप के हाथ में नहीं, विष्णु के हाथ में। और
एक में तीन पार्ट मौजूद
है,
है? एक पार्ट में तीन पार्ट मौजूद है।
हाथ उठा के बोला करो तो कैमरे में पता चले। हाँ,
एक में तीन पार्ट मौजूद है।
हाँ,
तो हम याद कैसे करें सुने?
याद कैसे करें? जो तीन पार्ट मौजूद है वो तीनों पार्ट आत्मा है या तीनों पार्ट शरीर है? एक में तीन है, लेकिन जो तीन है वो आत्मा है, बिंदी है या तीनों शरीर है? क्या अंतर पड़ा?
याद कैसे सच्ची हमारी याद?
अरे जब तीन बिंदी है और तीनों इकट्ठी है तो एक ही बिंदी हो गई ना। और मुरली में तो बाबा ने ये बताया है कि तुम ऐसे क्यों समझते हो, ये ब्रह्मा ज्ञान सुनाता है। तुम क्या समझो है? ऐसे बाबा ही ज्ञान सुनाते हैं तो तुम्हें शिव बाबा की याद रहेगी, तुमको फायदा हो जाएगा। तुम गोद में जाते हो तो बुद्धि में क्या रखो, ब्रह्मा की गोद में जाते हैं या शिव की गोद में जाते हैं? है? शिव की गोद में जाते हैं तो तुम किसको याद करो? है? शिव को याद करो। तो ये अपने ऊपर है। संग का रंग लेना या न लेना,
परशुराम जयंती मनाई जाती है तो ये संघ में भी यादगार है या अलग सा पार्ट है?
है?
संघ में भी यादगार है, ये अलग सा पार्ट है परशुराम जी।
संघ युग में चारों युगों की शूटिंग नहीं होती है? चारों युगों की शूटिंग होती है। तो चार युग में ऐसा युग कौन सा है जो चार कलाओं का ये? अरे कौन सा युग है जिसमें चार कलाएं रह जाती? कलयुग। यहां क्षत्रियों का राज्य खलास हो गया, और
अष्टरत्न में हीरा जो है धीरे से थोड़ी पन्ना के साथ है, तो पन्ना जो है इसका धर्म का छिड़के वाला कह सकते हैं?
जो आठ रत्नों का क्रम है वो क्रम को पहले देखना पड़ेगा। क्रम क्या है? मोस्ट वैल्यूएबल कौन सा है, वैल्यू लेस कौन सा है, और कम से कम वैल्यू का कौन सा है, और उत्तरोत्तर उससे ज्यादा ज्यादा वैल्यू के रत्न कौन कौन से हैं? मोस्ट वैल्यूबल तो एक ही राई है, और जो होंगे वो रतन रतन तो होंगे लेकिन हीरा तो नहीं होंगे। तो जो हीरे नहीं है कम वैल्यू के हैं, कम वजन के हैं, उनका कनेक्शन जरूर और धर्म वालों से।
हीरा जो है तो बारह हीरे बनाएगा
है,
हीरा जो बनेगा अब सामान तो बारह हीरे बनेगा।
बारह हीरे नहीं होते हैं, हीरे तो सिर्फ आठ ही होते हैं जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है, बाकी तो नष्ट देव है, उनको हीरा नहीं कहेंगे। एक्यूरेट वो अंधकार फैलाने वाले हैं या ज्ञान फैलाने वाले हैं रात्रि में? हीरा तो रात्रि में भी चमक मारता है, भले ब्रह्मा की रात्रि हो तो भी ज्ञान की रोशनी फैलाएंगे वाचा से, कर्मों से, वाइब्रेशन से, चलन से, या ज्ञान फैलाएंगे। विरोधाभास पैदा करेंगे या अवरोध ही बनेंगे। हाँ, जो अष्टदेव है वो एक के सहयोगी बनते हैं और बाकी जो चार हैं वो आदि से लेकर के अंत तक विरोधी बनते हैं। आदि का थोड़ा हिस्सा छोड़ दो और अंत का थोड़ा हिस्सा छोड़ दो, बाकी बीच में सदगुरु निंदक ठहर न पावे।
हीरे का जो गोता मिल है कहां से भी देखो तो क्लियर नजर आएगा साफ।
नहीं, हीरा भी साफ करना पड़ता है, घिसा जाता है तब इसकी वैल्यू आंकी जाती है। बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता। और
वो स्टेज तो प्राप्त करते हैं।
हाँ जी,
अष्टदेव से भी ऊपर गंगा है।
अष्टदेव से ऊपर होते हुए भी गंगा नीचे की ओर जाती है, या अष्टदेव की तरह सर के ऊपर ही धरी रहती है, अंतर क्या है? कुछ अंतर है या नहीं है? है? नहीं अंतर है? अंतर है। कोई सन्यासी से कहेंगे तो नाराज हो जाएगा, है गंगा जी को भी तुमने नीचे बता दिया।
महाभारत में शिखंडी का पाठ क्या है?
शिखा कहते हैं चोटी को और अंडी कहते हैं बीज को। तुम बच्चे चोटी के ब्राह्मण हो, उन चोटी के ब्राह्मणों में कोई अंडा भी होगा कोई अंडी भी होगी। अरे कोई होगी कि नहीं? अंडा कौन है? जो चोटी के ब्राह्मण हैं, यज्ञ के आदि में भी चोटी के ब्राह्मण थे और अभी भी चोटी के ब्राह्मण साबित होने वाले हैं, हो रहे हैं, उनमें कोई अंडा और अंडी होगा कि नहीं होगा? है? अंडा माने बीज, उनका भी बीज, और अंडी माने सब बीजों की फीमेल बीज होगी या नहीं होगी? होगी। कौन है? हैं?
अरे मुंह के अंदर ही बोल रहे
हैं। कौन बताएगा?
सृष्टि का आदि मानो
है,
सृष्टि का आदि मानो,
सृष्टि का आदि मानो अंडा और
जगत माता
जगदम्बा हो गई अंडी। तो अब क्या पूछना है? फिर अंडी होगी जगदम्बा होगी तो उसकी भुजाएं भी होगी। तो शिखा की अंडी कहेगी, शिखा माने चोटी, और चोटी के ब्राह्मणों में जो अंडी है उसकी भुजाएं भी है, सब शिखंडी है, उनके कर्मों से ही साबित हो जाएगा ब्राह्मण दुनिया में कि अंडी होते हुए भी ये अंडा का पार्ट बजाने वाली, क्योंकि रुद्रमाला के मणके हैं कि नहीं है, पुरुष चोला है कि नहीं है? नहीं है। फिर भी तरह पुरुष चोले जैसे। और आत्मिक स्थिति में कोई 24 घंटे भी रहेगा? 24 घंटे में अगर आत्मिक स्थिति नहीं होगी तो विनाश के टाइम पर बचेगा ही नहीं। पांच विकारों अथवा पांच तत्वों की चपेट में आ जाएगा। देवान वाले को भूत छोड़ेंगे ही नहीं। पंचभूत भी है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भी भूत है। देवान वाले कोई पकड़ते हैं
कलयुग में तो अभी वायुमंडल तमो प्रधान है ना बाबा, 24 घंटे स्वतः प्रधान कैसे रह जाए।
माने हम कलयुग में हैं कि सतयुग में हैं, हम कहाँ हैं? क्या याद रहना चाहिए है हमको? क्या याद रहना चाहिए कि हम कौन से युग में हैं? संगम युग याद रहना चाहिए। अगर संगम युग में है ये याद रहेगा, उसमें भी पुरुषोत्तम संगम युग याद रहेगा, तो हमारी ऊंची चीज जाएगी।
मुसलमान राजा जो हिंदू को जाते थे तो बाबा ने कहा कि अपने साथ हरम को लेके जाते थे
है,
वो हरम और बेगम अलग अलग है।
हरम माने जो हराम की चीज होती है उसको कहते हैं हरम। माने मुसलमान राजाएं जब कहीं चढ़ाई करते थे, किसी देश पर आक्रमण करते थे, तो वहां की स्त्रियों को अपनी दासी बना लेते थे। क्या वो कमाई हराम की है या सच्ची कमाई है? हराम की कमाई है। उनको जहां कहीं भी ले जाते थे युद्ध में, तो वहां हरम में रखते थे उनको। और
बाबा ने कहा कि चाहे आईलैंड का भी उद्धार करता हूँ, चाहे
आईलैंड
है कहीं का वो भी स्वर्ग में ले जा सकता हूँ।
ले जा सकता हूँ क्या? ले जाता हूँ।
और लंपट और घोड़ों को लेके जाता हूँ सब उन्होंने,
क्योंकि स्त्री जाति को पतित बनाने वाले लंपट है या स्त्री जाति है? उनको गिराने वाला कौन है? हैं? और उस गिराने वाले हैं, तो जो गिराने वाले हैं उन्हीं को पकड़ना चाहिए ना।
मोहम्मद आकर सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, दिल्ली को तोड़ा, साकार को क्यों नहीं मानता? साकार ने आए निराकर स्टेज को क्यों नहीं मानता?
मोहम्मद ने आकर के
सोमनाथ मंदिर को तोड़ा,
तोड़ा
तो साकार में आए हुए निराकार को क्यों नहीं मानते?
साकार में आए हुए निराकार को क्यों नहीं मानते? अगर मानता ही होता साकार को तो मूर्ति को तोड़ करके अपनी सीढ़ियों के नीचे उल्टा जाके क्यों रखता? नहीं मानता था इसीलिए तो उल्टा जाके रख दिया। शंकर की मूर्ति को उसने ले जाकर अपने दरवाजे की सीढ़ियों के ऊपर उल्टा जाके रख दिया, सीढ़ी बना के, ताकि जब चढ़ूं जब उतरूं तो पांव रख कर उतरूं। इसका मतलब वो निराकार को भगवान मानता है या साकार को मानता है? निराकार को मानता है। इसलिए हिस्ट्री में ये बात है कि मोहम्मद ने इस्लामियों की मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया, सब मूर्तियों को तोड़वा दिया। नहीं तो जितने भी इस्लामी थे वो सब भारत से ही निकले हैं। भारत में मूर्ति पूजा होती थी, इस्लामी भी मूर्ति पूजक थे, ढेर के ढेर देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते थे। बौद्ध भी निराकारी है, क्रिश्चियंस भी निराकारी है, जितने भी विधर्मी धर्म पिताएं हैं वो सब निराकार को मानने वाले हैं। सन्यासी भी निराकार को मानने वाले हैं, सिख भी निराकार को मानने वाले हैं। निराकार को मानते हैं इसीलिए तो विधर्मी है।
बाबा कल बसवेश्वर जयंती हो गई
है,
तो बसवेश्वर जयंती कल हो गई।
बसवेश्वर
जयंती महात्मा बसवेश्वर है जो कपड़ लिंगायत का धर्म प्रमुख।
अच्छा, हाँ जी।
तो उनका काम जो है 1200 वर्ष है, और वो जो परम रहस्य है जो मनमथ स्वामी उनका 400 वर्ष बताते, तो लिंग पूजा
1400 वर्ष
नहीं 1200
1400 वर्ष पहले संन्यास धर्म
लिंगायत धर्म, लिंगायत धर्म जो है वीरशैव धर्म जिसे कहे वीरशैव लिंगायत है। तो लिंग की पूजा कब से शुरू होगी?
लिंग की पूजा शुरू ही तब से होती है जब से द्वापर शुरू होता है। जा सब पहले से
पांच जगत गुरु निमित्त बताते हैं, पांच जगत गुरु पांच जगत गुरु को निमित्त बनाते हैं उनके द्वारा फिर लिंग की पूजा शुरू।
जगत गुरु पांच निमित्त नहीं है, जगत गुरु शंकराचार्यों को कहा जाता है। आदि शंकराचार्य ने हिंदुस्तान के चारों कोनों पर चार मठ स्थापन किए, उनके चार गुरु बनाए। उन चार गुरुओं को बोला गया है, बाद में एक 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 करके बढ़ाते चले गए।
ये बात वैष्णव के लिए है, ये जो बता रहे शैव पंथी
आ गया,
शैव पंथी अलग है,
शैव पंथी जो है वो सिर्फ शिव को मानते हैं।
पांच जगत गुरु
उनके पांच जगत गुरु
जो शिव को मानते हैं वो लिंग लिंग को मानते हैं, जो लिंगायत संप्रदाय कहा जाता है। और जो मुसलमान है वो लिंग को नहीं मानते, उससे निराकार को मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि निराकार अलग है और लिंग अलग है। लिंग है साकार का सूचक और निराकार है बिंदु का सूचक। वो बिंदु आत्मा साकार लिंग रूप में प्रवेश करती है, ऐसे साकार लिंग रूप में जो ऐसी निराकारी स्टेज बनाता है जिसे अपनी कर्मेंद्रियों का भान नहीं रहता, जैसे कि कर्मेंद्रियां है ही नहीं तो कैसे दिखाएं, इसलिए इंद्रियों को हटा दिया। शरीर में से हाथ काट दिए जाएं, टांगे काट दी जाएं और जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो भी हटा दी जाएं तो क्या रह जाएगा, लिंग ही तो रह जाएगा। वो लिंगायत संप्रदाय है।
कहने का मतलब है बाबा, चौदहवीं शताब्दी में ये संन्यास धर्म आया
है,
चौदहवीं शताब्दी में संन्यास धर्म आया और बारहवीं शताब्दी में महात्मा बसवेश्वर आया। महात्मा बसवेश्वर से लिंगायत धर्म स्थापन हुआ क्या, ऐसा उनका कहने का मतलब है?
हिस्ट्री है, हिस्ट्री बनाने वाले में मनुष्य ऊपर नीचे भी हो सकता है। किसी ने लिखा है जहाँ दिल बड़ी होती है वहाँ सब कुछ इच्छा पूरी हो जाती है, जहाँ दिल छोटी है वहाँ सब क्रिएशन छोटी हो जाती है। ब्रह्मा बाबा की दिल बड़ी थी या छोटी थी? बड़ी दिल थी, ये सारी इच्छाएं पूरी हो गई है, हो गई पूरी, ये तो बात ही गलत
है। सरेंडर होना और सरेंडर होना और स्वयंवरण करना
छोटी छोटी बच्चियां जो नाबालिग होती है सरेंडर हो गई उनको स्वयंवर कहेंगे? अच्छा चलो बड़ी बच्चियां हो, बहुत सी हैं जो ज्ञान को पूरा समझती ही नहीं है, जहां बहुत जा रहे हैं वहां हम भी जा रहे हैं, देखा तुमने, तो उनको स्वयंवर कहेंगे?
सरेंडर भी नहीं कहते
है,
वो सरेंडर भी नहीं कहते,
बस ऐसे ही जैसे काशी में जो कुआ है आप काशी करवट खाते थे, कुएं में अंधेरा पड़ा हुआ था, गए और खप हो गए, क्या भगवान मिल जाता था?
कहते हैं ना स्वर्ग में
है,
लेकिन कहते हैं स्वर्ग स्वर्गवासी।
हाँ, जब सतो प्रधान स्टेज होती है तब सरेंडर होते हैं, तो उस समय उनकी सुख की शूटिंग हो जाती है, पूर्व जन्म के पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है, हमेशा के लिए पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर पाप बनेंगे ही नहीं। सरेंडर होते हैं, फिर संघ के रंग में आते हैं, औरों के संघ के रंग में आते हैं, फिर पाप करने लग पड़ते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होने लग पड़ते हैं, एक दूसरे की बात मानने लग पड़ते हैं, बाप की बात का उल्लंघन करते हैं, तो तमो प्रधान बन जाते हैं। तब सरेंडर हुए या नॉन सरेंडर हुए है? क्या कहेंगे? चुपचाप नॉन सरेंडर ही हुए,
स्वयंवर की बात ही नहीं।
इसलिए इसको स्वयंवर नहीं कहेंगे। और
गर्भमान कितने दिन तक
है?
गर्भमान कितने दिन?
गर्भमान कितने दिनों का है?
बच्चा गर्भमान में कितने दिन तक
रहता है?
वहाँ कोई भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए वहां इतने लंबे समय तक गर्भ धारण करने की बात ही नहीं है। सब कुछ सहज सहज होता है।
अंडे में सर
है,
अंडे में बच्चा निकलता है वैसे।
हाँ तो
21 दिन में निकलता है।
भाई बुद्धि धरी रहती है। और
पवित्रता की स्टेज में रहने से क्या क्या असर होता है?
क्या क्या
असर होता है?
क्या क्या अनुभव होता है? क्या भस्म होता है? प्योरिटी की स्टेज में सब कुछ पाप कर्म भस्म हो जाता है। जो भी पाप है वो सब भस्म हो जाता है। भस्मासुर उनको कहा जाता है जो अपने पुण्यों को भस्म कर देते हैं। उल्टा नहीं समझना। और
बाबा जैसे पत्ती जड़ है, पत्ती से घड़ा बनता है,
है
वैसे आत्मा जड़ है,
है?
आत्मा
आत्मा जड़ है।
हाँ, शरीर से अलग है तो जड़ है।
शरीर से अलग भूत प्रेतों की आत्मा नहीं है?
उनको कारण शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर
है,
उनको भी सूक्ष्म शरीर रहता है।
ये शरीर तो नहीं रहता, ये मिट्टी का शरीर तो नहीं है। भूत प्रेतों को मिट्टी का शरीर है
नहीं,
नहीं है, तो भी आत्मा उनकी चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य। हाँ
बाबा, ब्रह्मा के चार पुत्र गाय हुए हैं, सनत सनातन सनंदन और सनत कुमार, तो ये कौन से ब्रह्मा की जात?
चार मुख्य धर्म है, देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्धी और क्रिश्चियन। इन चार मुख्य धर्म की चार क्यूब्स की चार बीज रूपात्मा है, जिनका नाम ब्रह्मा के चार मानस पुत्र हैं, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार।
बाबा बाबा कहते हैं मेरे तो सच्चे बच्चे होंगे तो सुख और दुख की परवाह नहीं करेंगे।
हैं?
सुख और दुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे।
सुख और दुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे,
मतलब कोई प्रकार का उनको सुख की इच्छा नहीं होगी।
उनको सुख की इच्छा नहीं होगी ऐसे कहते हैं बाबा। जो करेक्ट पुरुषार्थी होंगे उनको सुख दुख की इच्छा नहीं होगी ऐसे बाबा कहते हैं कि मनुष्य गुरु कहते हैं। बिना है मापदंड के कोई काम किया जाता है और किया जाता है तो वो सफल होता है क्या? आत्मा की इच्छा है कि हम सुख भोगे दुख न भोगे, ये गुरुओं की पढ़ाई है कि हमें न सुख लेना है न दुख लेना, हम सुख दुख से परे हो जाएं, सुख दुख से परे होने का ज्ञान भगवान हमको नहीं देता। भगवान तो कहते हैं जब आत्मा सतो प्रधान होती है तो सुख भोगती है, जब तमो प्रधान होती है तो दुख भोगती है। मैं जब आता हूं तो सुख और दुख दोनों से परे शांति धाम में ले जाता हूं। और
आत्मिक स्थिति वाला इच्छा से परे ही रहेगा ना?
हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ,
आत्मिक स्टेज में इच्छाओं से परे ही होगा ना?
आत्मिक स्टेज में रहने वाला जो आत्मिक स्टेज में सदैव रहेगा वो ये इच्छा तो जरूर करेगा कि हम वो दुख और सुख की अनुभूति से परे हो जाए, माने बाप समान हमारी स्टेज हो जाए और बनी रहे। बाप समान स्टेज माने निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो हम बाप के नजदीक पहुंच जाएंगे और परम धाम में जितना ही हम बाप के नजदीक की स्टेज में होंगे, सुखधाम में भी हम उतनी ही ऊंची स्टेज में आवेंगे। सुखधाम में भी बाप होगा या नहीं होगा? है, अरे शिव बाबा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वहां नजदीक रहना है या दूर रहना है? कहां रहना है? नजदीक ही रहना। कोई भी पढ़ाई है वो पढ़ाई का अहम ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। जैसे वकालत की पढ़ाई है तो ऊंचे से ऊंचा अहम ऑब्जेक्ट है कि हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएं। ऐसा लक्ष्य लेकर के कोई चलता होगा या नहीं चलता होगा? चलता होगा। ये दी बेस्ट लक्ष्य है। ऐसे ही इस ईश्वरीय पढ़ाई का भी लक्ष्य है क्या, जो हमको लगातार पुरुषार्थ में आगे बढ़ाता है। लक्ष्यहीन आत्मा जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण हो जाते हैं। लक्ष्यहीन है तो लक्षण भी लक्ष्यहीन हो जाए, लक्षणहीन हो जाएंगे। सन्यासियों की पढ़ाई हो जाती है इच्छा मात्रम अविद्या, माने इस बाबा कहते हैं इस जीवन की कोई हमें इच्छा नहीं करनी है, ये लौकिक दुनिया की हमें कोई इच्छा नहीं करनी है, जो दुनिया भस्म होने वाली, लेकिन नई दुनिया की इच्छा करनी है या नहीं करनी है? करनी है।
इच्छा मात्रम अविद्या
है,
इच्छा मात्रम अविद्या ये पॉइंट 100% नहीं लग सकेगा।
कहाँ नहीं लग सकेगा?
सभी की सुख भोगना है, इच्छा रहेगी ना?
इच्छा रहेगी, इस दुनिया की इच्छा रहेगी,
आने वाली दुनिया,
आने वाली दुनिया की इच्छा है। वो आत्मा से कनेक्टेड है या देह से कनेक्टेड है? आने वाली दुनिया की इच्छा जो हम करेंगे वो देह से कनेक्टेड इच्छा है या आत्मा से कनेक्टेड इच्छा है? आत्मा से कनेक्टेड इच्छा है। ये तो अच्छी बात हुई। जो गुरु लोग सिखाते हैं वो गुरुओं की पढ़ाई जो है, मनुष्यों की पढ़ाई जो है, वकील बनावेंगे, ये बनावेंगे, वो बनावेंगे, वो इस जन्म की पढ़ाई से कनेक्टेड है, देह की पढ़ाई से कनेक्टेड है, एक जन्म से कनेक्टेड है, अंतकाल की पढ़ाई है, वो अविनाशी पढ़ाई नहीं है। उसका लक्ष्य भी अविनाशी